ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी किताब चरित्रहीन। भृंगी यानी कीड़ा जैसे झिंगुर को पकड़कर खींच कर लाता है, ठीक उसी तरह किसी दुर्निवार जादू की जोर से किरणमयी उस आधे बेहोश विभ्रांत चित्त अभागे दिवाकर को खींच के जहाज घाट पर पहुंच गई और टिकट खरीदकर अराकान जाने वाले जहाज पर सवार हो गई। भीड़ न होने के कारण जहाज के अफसरों ने दिवाकर और किरणमयी को पति पत्नी समझकर कैबिन में स्थान दे दिया। वहां किरणमयी को बिठाकर दिवाकर डेक के एक एकांत हिस्से में रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। क्रमशः डेक पैसेंजर्स के कर्कश शब्द से जहाज के अगले हिस्से की तरफ दिवाकर का हृदय भी भीतर ही भीतर कांप उठा। क्षण भर में ही जहाज भागीरथी की बीच धारा में पहुंच गया और अपार सागर को पार करने के लिए धीरे धीरे गति और शक्ति का संचय करने लगा। जब ये ठीक समझ पड़ा कि जहाज चल दिया, तब अकस्मात दिवाकर की दोनों आंखों में आंसू भर आए और उसने दोनों हथेलियों से जोर से मुंह ढककर किसी तरह उमड़ी हुई रुलाई को दबाकर अपनी लज्जा का निवारण किया। पूर्व दिशा का आकाश उस समय भी बाल सूर्य की लाली से लाल हो रहा था और उसके निसंदिग्ध उपेन दादा उस समय तक ज्योतिष बाबू के घर में पलंग से उठे नहीं थे। भागने के लिए घर से बाहर निकलने तक जो भीषण अप्रकट ग्लानी दिवाकर के मन में अनजाने ही जमा उठी थी, उसका आखिरी हिस्सा कितना विभत्स और कैसा भयानक है, ये बात अब उसकी आंखों के आगे प्रकट हो उठी। एक भले घर की गृहस्थ वधू को कुल से बाहर किसी अज्ञात देश में वो स्वयं लिए जा रहा है, ऐसा असंभव कांड उसके अंतःकरण में कहीं भी अब तक सच्चा आश्रय नहीं पा रहा था। जब उसने देखा कि जहाज सचमुच चला जा रहा है, तभी उसे ये स्पष्ट उपलब्धि हुई कि अपनी शिक्षा, संस्कार, चरित्र, स्कूल, कॉलेज, देश, बंधु बांधव और सबसे बढ़कर उसके पिता के समान उपेन दादा, इन सब से वो कैसे निर्मम भाव से छूटा जा रहा है। वो अपने उपेन दादा की नज़रों में अब भी एक छोटा बच्चा है। उन्हीं उपेन दादा के मन का भाव ये खबर सुनकर कैसा हो जाएगा, ये सोचते ही जैसे उसके हृदय का स्पंदन बंद हो जाने को हुआ। वो उसी जगह दोनों घुटनों के बीच मुंह डालकर बैठ गया और क्षण भर में ही उसके न रुक सकने वाले आंसू झरझर करके गिरने लगे। इसी समय किरणमयी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह से गीले स्वर में बोली, लल्ला जरा कैबिन में आकर बैठो। बड़ी कोशिश से और बड़े देर में दिवाकर अपनी आंखों का पानी सुखाकर सिर नीचा किए उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे किरणमयी के पीछे पीछे कैबिन में आकर उपस्थित हुआ। किरणमयी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दिवाकर को अपने पास बिठाकर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसके मुंह को ताकते हुए करुण स्वर में कहा, रोते क्यों हो भाई? दिवाकर की आंखों में फिर आंसू गिरने लगे। आंचल से आंसू पोंछ कर किरणमयी ने कहा, सच बताओ लल्ला, तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं? किरणमयी ने उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपनी छाती पर खींच कर दबा रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए सांत्वना दी। दिवाकर ये नहीं देख पाया कि किरणमयी का चेहरा एक अद्भुत हंसी से भर गया है और वो किसी तरह उस उच्छ्वासित हंसी को दबाए हुए है। इसी तरह बहुत देर बीत गई। बहुत देर में जब दिवाकर के आंसू आप ही चुक गए, तब वो अपेक्षाकृत सुस्त होकर उठ बैठा और कुछ न कहकर दरवाज़ा खोलकर धीरे से बाहर हो गया। जहाज उस समय नदी के किनारे से सटकर टेढ़ा मेढ़ा चलकर मिट्टी से बच बच कर धीमी चाल से समुद्र की ओर जा रहा था। मछुओं की छोटी बड़ी डोंगियाँ और माल से लदी नावों के क्षुद्र यात्री उस बहुत बड़े जहाज की बहुत बड़ी मर्यादा की रक्षा करते हुए बीच में फासला छोड़कर दूर दूर बड़ी सावधानी से चल रहे थे। दिवाकर रेलिंग के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और दूर और निकट, स्थल और जल में जो कुछ उसे दिखाई देने लगा, उसी से मन ही मन अत्यंत वेदना के साथ चिर विदा लेते लेते अपने हृदय का असहनीय दुख अपने अंतर्यामी से निवेदन करने लगा। कुछ देर में फिर कैबिन के भीतर पुकार हुई। किरणमयी ने कहा, बहुत देर हो गई, नहा आओ, मैं तब तक तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध किए रखती हूँ। उसने हाल ही नहाया था। वो पीठ के ऊपर गीले बाल छिटकाकर कैबिन के फर्श पर बैठकर हांडी का मुँह खोलकर खाने पीने के सामान का हिसाब लगा रही थी। रात को ही उसने मेहरी के हाथों ये सब मंगा लिया था। दिवाकर ने जवाब दिया, तुम खा लो भाभी, मुझे तनिक भी भूख नहीं है। किरणमयी ने सिर उठाकर देखा, उसकी आंखों में कौतुक नाच रहा था। बोली, ये ना होगा। इस समय तुम ही मेरे गुरुजन स्वामी की तरह हो। इसी से सोच रखा है कि तुम्हारी थाली में तुम्हारा ही प्रसाद खाकर आज से अपने नारी जन्म को सार्थक करूंगी। और दुरंत हंसी के वेग को संभालने के लिए मुंह में आंचल भरकर वो फूल फूल कर हंसने लगी। उसका ये परिहास दिवाकर के हृदय को एकाएक शूल सा लगा। वो लज्जा और घृणा के मारे कुछ न कहकर फौरन बाहर चले जाने के लिए उद्यत हो गया। किरणमयी की नज़र इसी ओर थी। उसने हाथ बढ़ाकर दिवाकर की धोती का सिरा पकड़ लिया और हंसकर कहा, ये तो सप्तरथियों का व्यू है लल्ला। भागते कहाँ हो? इसके भीतर घुसने की राह है, किंतु बाहर निकलने की राह क्या सभी को मालूम होती है भाई? अगर यही इच्छा थी तो फिर निकलने की विद्या कल अपने उपेन्द्रदाता से सीख क्यों नहीं आए? फिर तत्काल ही धोती का खूंट छोड़कर गंभीर होकर उसने कहा, हंसी नहीं कर रही हूँ लल्ला, मेरी बात मानो, नहाकर कुछ खा लो, उसके बाद बाहर की रेलिंग पकड़कर जितना जी चाहे रोना, मैं आपत्ति नहीं करूँगी। लेकिन ये भी कह देती हूँ कि इसके बाद इन आंसुओं की बहुत ज़रूरत होगी, इन्हें बिना प्रयोजन के व्यर्थ खर्च करके फिर कहीं पछताना ना पड़े। दिवाकर ने कोई जवाब न दिया। वह इस मर्ममेदी व्यंगोक्ति को सहन कर सिर झुकाए चुपचाप बाहर चला गया और किरणमयी भी काठ की तरह सुन्न होकर बैठी रही। कारण, उसके इस उपहास के निष्ठुर सत्य ने केवल दिवाकर को ही नहीं घायल किया, बल्कि दूने वेग से लौटकर किरणमयी के अकारण परिहास के झरने को भी पल भर में ही अवरुद्ध कर दिया। बहुत देर तक इसी तरह निश्चल भाव से बैठे रहने के बाद एकाएक उसे ये ख्याल आया कि बहुत देर हो गई, दिवाकर अभी तक नहाकर लौटा नहीं। तब उसने बाहर जाकर देखा, दिवाकर का कहीं पता नहीं। लौटकर दरवाज़ा बंद करके फर्श पर बैठते ही उसके मुँह से आप ही निकल पड़ा, आह, ये भी भाग्य में लिखा था। इसके बाद ही उसकी दोनों आँखों का जल मुक्ताहार की तरह पड़ने लगा। बाहर आकर दिवाकर स्थिर नहीं हो सका। वो इधर उधर घूम कर टहलते टहलते जहाज़ के जिस हिस्से में तीसरे दर्जे के यात्री सिकुड़े हुए बैठे थे वहाँ उतर गया और भिन्न भिन्न प्रदेशों के अनेक जातियों के यात्रियों में अपने को बहलाए रखने के लिए राह खोजता फिरने लगा। इस भारतवर्ष में कितनी विभिन्न जातियाँ हैं, कितने प्रकार की भिन्न भिन्न पोशाकें और पहनावे हैं, कितनी अज्ञात भाषाएं प्रचलित हैं, ये आज पहले पहल देख सुनकर दिवाकर विस्मय से अवाक हो गया। जहाज के इस खोल के भीतर उस जनता और अनेक प्रकार की भाषाओं के सम्मिश्रण से जो अद्भुत कोलाहल हो रहा था वो भी कैसा विचित्र था। दिवाकर सीढ़ी से नीचे उतर गया और निर्वाक विस्मय से स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। थोड़ी सी जगह पर दखल जमाने के लिए यात्रियों के बीच कुछ देर पहले जो प्रबल धक्कम धक्का, ठेला ठेली और ज़बरदस्त तर्जन गर्जन चल रहा था वो अब थम गया था। यात्री लोगों ने अपने दखल किए हुए स्थानों पर बिस्तर बिछाकर सामान का बेड़ा खड़ा करके भरसक निरापद होकर अब अपने पड़ोसी की ओर ध्यान देने की फुर्सत पाई थी। खरेक खरेक का संतोषजनक परिचय पाने के लिए उत्सुक होकर जोर जोर से बोल रहा था। दिवाकर ने समझ लिया, ये कोलाहल उसी की समष्टि है। एक ओर दिवाकर की नज़र पड़ते ही एक बंगाली उठकर चिल्लाने लगा, बाबू महाशय, ज़रा इधर आइए, इधर आइए। इसके पास एक मजबूत काठी की औरत बैठी थी। उसने भी उत्सुक नेत्रों से उस मर्द के अनुरोध का ही समर्थन किया। दिवाकर बड़े परिश्रम से बहुत से लोगों की झिड़की और लाल लाल आँखों को बर्दाश्त करता हुआ भीड़ के भीतर सावधानी से बच बचा कर पैर रखता हुआ उसके पास पहुँचा और उस आदमी ने पास रखे हुए लोहे के ट्रंक के ऊपर जगह दिखाकर कहा, ये मेरी टीन की संदूक नहीं है साहब, असल लोहे की है, आप बेखट के बैठिए। हाँ महाशय, आप? दिवाकर ने कहा, ब्राह्मण। उस आदमी ने फौरन दोनों हाथ बढ़ाकर दिवाकर के जूते के ऊपर से ही उसके चरणों की धूल लेकर जीभ में, गले में और माथे में बड़ी भक्ति से लगाकर कहा, मैंने सोचा था ये कई दिन प्रथा ही जाएंगे। अच्छा महाशय, आप हैं कहाँ? दिवाकर ने उंगली से जहाज़ का ऊपरी हिस्सा दिखा दिया। उसने कहा, कैबिन में हैं। चाहे जहाँ रहिए, शाम को एक बार पैरों की धूल देना न भूलिएगा। जाइएगा कहाँ, रंगून? दिवाकर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, अराकान। अराकान में तो मैं भी रहता हूँ, आज 20 बरस से वही हूँ, मगर महाशय को तो मैंने कभी देखा नहीं। यही पहले पहल जा रहे हैं? वहाँ शायद कोई आत्मीय है? नहीं है? ना हो, आप कुछ चिंता ना कीजिएगा, महाशय के माता पिता के आशीर्वाद से मैं वहाँ का एक बाड़ी वाला हूँ, मेरे कई कमरे खाली पड़े हैं, बस आप मेरे साथ ही चलिएगा। फिर पास बैठी हुई औरत को दिखाकर कहा, ये बाड़ी वाली है। बाड़ी वाली अब तक एक टक दिवाकर की ओर ताक रही थी। उसने बहुत ही भारी मोटे गले से पूछा, आपकी बहू भी शायद साथ है। दिवाकर का मुंह लज्जा से लाल हो उठा। उसने सिर हिलाकर किसी तरह ये जता दिया कि है। इस औरत के माथे में गोदना, मांग में खूब चौड़ा सिंदूर, नाक में नथ और दोनों कानों में 20-20 बालियाँ थीं। सिर पर जो ज़रा सा नाम मात्र को आँचल पड़ा था वो भी उत्साह के आवेश में नीचे खिसक गया। बोली, अच्छा ही हुआ जो आपसे भेंट हो गई। अराकान बहुत बुरी जगह है बाबू, मंगों का मुल्क है, लेकिन मेरे घर पर किसी की मजाल नहीं कि दांत गड़ावे। मैं ऐसी वैसी बाड़ी वाली नहीं हूँ। उस देश में ऐसा कोई नहीं है जो कामिनी वैष्णवी को न डरता हो। आप मेरी बाड़ी में रहिएगा, कोई डर नहीं है। किराया 5 रुपये महीना, लेकिन मैं 4 ही लूँगी। हाँ बाड़ी वाले, तुम्हारे कारखाने में इन्हें कोई काम मिल जाएगा ना? बाड़ी वाली ने ज़रा इधर उधर करके कहा, सो क्यों ना मिल पाएगा? दिवाकर ने प्रश्न किया, महाशय का नाम? उसने कहा, हरीश भट्टाचार्य। ना ना, हाथ ना जोड़िए, अपराध होगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कैवर्त हूँ, मल्ला। लोग आदर करके भट्टाचार्य कहते हैं। मैंने 3 लड़की, 1 कंठी और माला पहन ली है, मछली मांस खाना छोड़ दिया है, और बहुत तो कर चुका महाशय। 2,500-2,500 रुपये खर्च करके चारों धाम भी हो आया, और घर में भी 3-4 साल से नवरात्र में दुर्गा पूजा करता हूँ। अब और क्यों, इसी से बाड़ी वाली से बीच बीच में कहता हूँ कि अराकान में जो कुछ है सब बेच बाँच कर चलो, किसी तीर्थ स्थान में चल कर रहा जाए। कहकर वो उदास मुँह बनाकर चुपचाप ऊपर की ओर टालने लगा। बाड़ी वाली ने अपने स्वाभाविक मोटे गले से जवाब दिया, मैं भी तो यही कहती हूँ, कच्ची उम्र में तकदीर के फेर से जो कुछ किया है सो तो किया ही है, वो कुछ मेरे माथे पर नहीं लिखा है। मैं भी कहती हूँ बाड़ी वाले, बस अब और नहीं, चलो यहाँ से चलें। यूँ कहकर वो भी आंखें ऊपर करके सुन्न होकर बैठी रही। दिवाकर पक्का आदमी न था, इस सब इतिहास का निगूढ़ तत्व कुछ भी न समझ पाकर वो भी चुप बैठा रहा। बाड़ी वाली ही बोली, हाँ बाड़ी वाले, तो फिर अब चूड़े भिगो दूँ? बाड़ी वाले का ध्यान उचट गया। उसने धीरे धीरे कहा, भिगो दो। संसार से अनभिज्ञ दिवाकर इस इशारे का मतलब अब समझा, उठकर खड़ा हुआ और बोला, अब मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा। हरीश से विदा होकर दिवाकर बिना नहाए खाए ही डेक की एक आराम कुर्सी पर लेटकर सो गया था। वो जान ही न पाया कि जहाज़ कब नदी के गंदले पानी से निकलकर खारी सागर के काले काले अथाह पानी में पहुंच गया। लोगों के अस्फुट कोलाहल से दिवाकर की नींद खुल गई। उसने आंख खोलकर सामने देखा, लाल लाल सूर्य डूब रहा है। बहुत से लोग तर्क वितर्क करते करते यही देख रहे थे। जिस सूर्यास्त का विवरण करके उसने पहले अंग्रेजी और बंगला की पुस्तकों में अनेक बार पढ़ा था, वही सूर्यास्त, ये वही सचमुच का समुद्र है। चारों ओर दृष्टिपात करके उसने एक बार उस अनंत जल राशि को देख लिया और फिर अस्त हो रहे सूर्यदेव को नमस्कार करते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। सूर्य के अस्त हो जाने पर भी वो उधर ही ताकता रहा। क्रमशः आकाश और जल दोनों का एक सा गहरा काला रंग हो गया। तब भी दिवाकर वैसे ही रेलिंग पर झुका स्तब्ध होकर ताकता रहा। रात की ठंडी हवा तेजी के साथ चलने लगी। ऊपर का डेक लगभग जनशून्य हो चला। सिर के ऊपर कृष्ण पक्ष का गहरा काला आकाश था और नीचे सागर का वैसा ही गहरा काला जल। दोनों के बीच दिवाकर ने अपने हृदय की बहुत गहरी काली माँ को डुबा दिया और कुछ देर के लिए उसे कुछ स्वस्ती मालूम हुई। इसी समय अचानक किसी के कोमल हाथ के स्पर्श से उसका ध्यान उचट गया। चौंक कर देखा, किरणमयी है। किरणमयी ने कहा, क्या हो रहा है लल्ला, तुमने क्या मरने का पण करके अनशन व्रत लिया है? दिवाकर ने जवाब नहीं दिया, मुँह फेर कर चुप हो रहा। किरणमयी क्षण भर उत्तर की राह देख कर, भीतर आओ, कहकर जोर करके ही उसे कैबिन के भीतर खींच ले गई और फर्श के ऊपर बिछाए गए बिछौने पर बिठाकर बोली, और कुछ अगर न समझो तो कम से कम ये तो समझ रहो कि 100 बार रोने धोने पर भी जहाज़ तुमको लौटा नहीं ले जाएगा। खाना पीना छोड़कर सूख कर मरने से भी नहीं, सागर के जल में फांद पड़ने से भी नहीं, अराकान जाना ही होगा। तो फिर क्यों अपनी देह सुखाकर मुझे भी सुखा रहे हो? मैं जो देती हूँ उसे जितना खा सको खा लो, उसके बाद जहाज़ जब अराकान पहुँच जाए तब जहाँ तुम्हारी खुशी हो उतर जाना, जब खुशी हो तब लौट आना। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ लल्ला, रोकूंगी नहीं। कहते कहते ही किरणमयी का कंठ स्वर उग्र हो गया और भूख प्यास से व्याकुल नेत्र आग की तरह दीप्त हो उठे। दिवाकर सिर उठाकर मुग्ध की तरह ताकता रहा। आज इतने दिनों के बाद उसे जान पड़ा जिसे पर्दे की आड़ में वो अकस्मात सत्य वस्तु के दर्शन पा गया। किरणमयी के दोनों सुंदर नेत्रों की वासना दीप्त भूखी नज़र के भीतर और चाहे जो हो उसके लिए प्यार एक बूंद भी नहीं है। तथापि उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप नज़र नीची करके दोनों घुटनों के बीच मुंह डालकर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। क्षण भर बाद ही किरणमयी उठी और एक हांडी के भीतर से कुछ मिठाई एक छोटी सी रकाबी में रखकर ले आई और दिवाकर के सामने घुटने टेक कर ऊँची होकर बैठ गई। फिर ज़बरदस्ती एक हाथ से उसका मुँह उठाकर दूसरे हाथ से एक एक मिठाई का टुकड़ा उसमें डालने लगी। इसी तरह सब मिठाई खिलाकर किरणमयी ने क्षण भर जैसे अपने मन में कुछ सोचा, फिर झुककर दिवाकर के गीले होठों को चूम लिया और वो खिलखिलकर हंस पड़ी। इस विषाक्त चुंबन और निष्ठुर हंसी को दिवाकर ने अपनी सारी शक्ति एकत्र करके सह लिया। किंतु रात को जब एक ही बिस्तर पर एकत्र सोने की तैयारी होने लगी, तब उससे किसी तरह न रहा गया। उठकर खड़े होकर उसने कहा, ये नहीं होगा भाभी, ये मुझसे किसी तरह नहीं हो सकेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बाहर किसी भी जगह जाकर पढ़ रहूँगा, लेकिन तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करने के लिए किसी तरह इस कैबिन में रात नहीं बिता सकूँगा। किसी तरह नहीं, किसी तरह नहीं। किरणमयी बिछौने बिछा रही थी, घूमकर खड़ी हो गई। दिवाकर फिर दृढ़ स्वर में कह उठा, ये किसी तरह न होगा। किरणमयी ने पहले हंसने की चेष्टा की, किंतु हंसी नहीं आई। बोली, क्या न होगा लल्ला, सोना। उसकी दोनों आंखें गोली खाई हुई शेरनी की तरह धक धक करके जल उठी। उसने दांतों से दांत दबाकर धीरे से कहा, तुम क्या सोचते हो, किसी भले घर की बहू को घर से निकाल लाना इतना सहज है? या तुम ऐसे दूध पीते बच्चे हो कि किसी काम का क्या फल होगा कुछ भी नहीं समझते? सोचा होगा कि सारा अपराध मेरे सिर डालकर मजे से भले मानुस की तरह देश लौटकर अपने उपेन दादा के पैर छूकर कसम खाकर कहोगे कि तुम साधु पुरुष हो और तुम्हारे उपेन दादा सिर ऊंचा करके चलेंगे। ये ना होगा लल्ला, तुम मेरी सब बातें नहीं समझोगे, समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम साधु पुरुष हो या नहीं इसकी भी मुझे चिंता नहीं, किंतु अपराध के बोझ से जब मेरा सिर झुक जाएगा, तब तुम्हारे उपेन दादा को सिर ऊंचा करके चलने लायक मैं किसी तरह न रहने दूंगी, ये तुम निश्चय जान रखो। ये कहकर वो फिर शैया रचना में लग गई और पास ही गद्दीदार बेंच के ऊपर दिवाकर जड़ मूर्ति की तरह सिर नीचा करके बैठा रहा। रात को दोनों पास पास सोए। भाग्य के फेर से सर्वस्व दान करके राजा हरीश्चंद्र ने जैसे डोम के साथ आत्मसमर्पण किया था, वैसे ही दिवाकर ने इस घोर पापिष्ठा की सेज पर आत्मसमर्पण कर दिए। रात भर दिवाकर के तंद्रा से ढके हुए दोनों कानों में न जाने कहाँ का अस्फुट रोना एक प्रवाह की तरह आकर पहुँचता रहा और उसी के बीच में न जाने किनकी क्रुद्ध लंबी सांसें रह रहकर गरज उठने लगीं। सवेरे के लगभग एक झोंका खाकर वो एकदम सजग हो उठा और उसे मालूम हुआ कि बाहर प्रबल वेग से हवा चल रही है जिससे जहाज डोल रहा है। आंखें खोलकर देखा, उसकी छाती पर किरणमयी का कोमल बायां हाथ निद्रित काले सांप की तरह पड़ा हुआ है। कहीं जागकर वो उसे डस न ले, इस आशंका से उठाने का साहस नहीं किया, आंखें मूंदे पड़ा रहा। हवा और जहाज के डोलने का वेग क्रमशः बढ़ने लगा और उससे किरणमयी की नींद खुल गई। उसने दिवाकर की छाती पर पड़े हुए शिथिल हाथ को जरा दबाकर धीरे से पूछा, बाहर ये क्या हो रहा है, तूफान है ना? दिवाकर ने कहा, हाँ। तो उपाय? दिवाकर ने कुछ जवाब नहीं दिया। किरणमयी ने मन ही मन हंसकर कहा, शायद भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि जहाज डूब जाए, क्यों ना लल्ला? दिवाकर ने कहा, ना। किरणमयी ने कहा, बस एक छोटी सी ना, तुम मनुष्य हो या पत्थर लल्ला? और दिवाकर को छाती के ऊपर जोर से खींचकर दबा लिया और कहा, जहाज अगर डूबे तो हम दोनों इसी तरह मरे, किनारे जाकर लगेंगे, लोग देखेंगे, अखबारों में छपेगा, तुम्हारे उपेन दादा पढ़ेंगे, ये कैसा रहेगा लल्ला? चित्र का ये जो अंश किरणमयी ने हंसी के छल से खोलकर दिखाया, इसकी कोई जगह दिवाकर के निकट शून्य न थी। वो मन ही मन कंटकित होकर धीरे धीरे अपने को बाहुबंधन से छुड़ाकर बैठ गया, फिर वहां से लड़खड़ाता हुआ चुपचाप बाहर निकल गया।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।